संबंध भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक तीन प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान आगे के दो श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। इस संसार में क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। व्याख्या, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, यह लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगत में दो विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ अर्थात जड़ पदार्थ और अविनाशी जीवात्मा अर्थात चेतन पदार्थ। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। पंच महाभूतों से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर जो स्वभाव संस्कार अज्ञान आदि कारण समष्टि जगत के साथ एक है, ये सब क्षरणशील है, नाशवान है, इसलिए इनको क्षर के नाम से कहा जाता है। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं, केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही है। पदार्थों और क्रियाओं को संसार का माने तो कर्मयोग, प्रकृति का माने तो ज्ञान योग और भगवान का माने तो भक्ति योग। अब इनको चाहे किसी का भी माने पर ये अपने नहीं है, इसमें तो सबको एक होना ही पड़ेगा। इसलिए स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। और जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता, जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षर है, पद है। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन है। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था उस संसार को यहाँ अक्षर पद से, और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था उस जीवात्मा को यहाँ अक्षर पद से कहा गया है। यहाँ आए हुए क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ये तीनों ही शब्द गीता में तीनों लिंगों में आए हैं। जैसे इसी श्लोक में क्षर नाम पुल्लिंग से आया है, 7वें अध्याय के पांचवें श्लोक में इसी को अपरा कहा जो स्त्रीलिंग है, और चौदहवें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में महद ब्रह्म लिखा जो वो कहा वो नपुंसक लिंग है। ऐसे ही अक्षर को पंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक में जीव भूतय कहा जो पुल्लिंग है, सातवें अध्याय के पांचवें श्लोक में जीव भूताम कहा जो स्त्रीलिंग है, और आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में अध्यात्मम कहा तो नपुंसक लिंग है। ऐसे ही पुरुषोत्तम शब्द कहा तो नवे अध्याय के अठारहवें श्लोक में गतिर भर्ता, तो वह भर्ता शब्द पुल्लिंग है। नवे अध्याय के अठारहवें में गति शब्द स्त्रीलिंग है, और उसी नवे अध्याय के अठारहवें में शरणम शब्द नपुंसक लिंग है। तो इन क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम इन तीनों को तीनों लिंगों के नाम से कहा गया है। इससे ये समझना चाहिए कि प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। क्षर है सर्वाणि भूतानि। इस अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ क्षर नाम से कहा गया है। यहाँ भूतानि पद प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों का ही वाचक समझना चाहिए, कारण कि यहाँ भूतों को नाशवान बताया गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः यहाँ भूतानि पद जड़ पदार्थों के लिए ही आया है। कूटस्थोक्षर उच्यते। इसी अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। आठवें अध्याय का उन्नीसवां और तेरहवें अध्याय का इकतीसवां, इसलिए यहाँ इसको कूटस्थ कहा गया है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्राय समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को बारहवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कूटस्थ कहा, तथा आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में अक्षर कहा गया, ऐसे ही यहाँ पंद्रहवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में जीवात्मा को कूटस्थ और अक्षर कहा गया। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्म तत्व ही है। परिशिष्ट भाव पहले छठे श्लोक में और फिर बारहवें से पंद्रहवें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वो सब अलौकिक का ही है। इस सोलहवें श्लोक में भगवान लोके शब्द से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत माने क्षर तथा जीव माने अक्षर दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एवच। और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य है। आगे पंद्रहवा का सत्रवा, कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो योग मार्ग भी लौकिक है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, अक्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। सातवें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहां अक्षर नाम से और परा प्रकृति को यह अक्षर नाम से कहा गया है।